Shanti. 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 इंद्रवदन आप सबके समक्ष प्रवचन के लिए जो विषय दिया है वो है आनंद और परमानंद। जगत न आनंद स्वरूप है न सुख स्वरूप है न दुख स्वरूप है, ये है एक अस्तित्व है। दुख सुख का संबंध आनंद का संबंध, आनंद हमारी अनुकूलता में है और अगर हम आनंद में नहीं है तो प्रतिकूलता है। जब हम सच्चिदानंद की बात करते हैं तो सत अस्तित्व है। हमारा आपका ये प्रकट होना ये अस्तित्व है, अस्तित्व का एक आकार है। मिट्टी एक अस्तित्व है, मिट्टी का कोई संकल्प नहीं है। मिट्टी में से आप गणपति का भी आकार बना सकते हैं, शेर का भी, हाथी का भी, जो भी आप चाहें आप उसका आकार दे सकते हैं। तो आपका विज्ञान भी कहता है जब हमारा मंत्र आया ओम पूर्ण मदः पूर्ण विदम पूर्ण आत् पूर्ण मुद्दचते, तो विज्ञान ने भी इस पूर्णता को शून्य के रूप में देखा। हम थोड़ी मर्यादा से आपके समक्ष बात करेंगे। संत हों गुरु हों लेकिन विज्ञान के आधार पर भी थोड़ा इशारा करूंगा आप समझें। वैज्ञानिकों ने विस्फोट किया और कहा कि जो कुछ वेद में लिखा है वो विज्ञान के आधार पर भी सत्य है। पढ़े लिखे लोगों ने मुझसे भी पूछना शुरू किया कि स्वामी जी आप वैज्ञानिक हैं, ये जो वैज्ञानिकों ने विस्फोट किया आप विज्ञान से या तर्क से हमें समझाने कोशिश करें, ये बात ठीक है। हमारे ऋषियों ने वेद में अनुभव के आधार पर मंत्रों की रचना की है। हमारे ऋषियों ने कह दिया एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक के पीछे विस्फोट है। अब जा विचार कीजिए, यहाँ थोड़ी मर्यादा से आपके समक्ष बात करूंगा। हमारा आपका जन्म न पिता से है न माँ से है, माता पिता के मेल से है। चाहे शेर की बात हो, घोड़े की बात हो, कि बकरी की बात हो, कि हमारी आपकी बात हो, कि सांप की बात हो, किसी की बात हो, विज्ञान कहता है आपके समक्ष पानी है। विज्ञान की दृष्टि से इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उस घर्षण के विस्फोट से पानी बनता है और जिसे हम विज्ञान की भाषा में H2O बोलते हैं और नहीं तो दो चीजों का मिलन है। तो जो आपको इशारा कर रहा हूं आपका और हमारा जन्म न केवल माँ से है न केवल पिता से, क्षमा करेंगे संकेत दूंगा, एक प्रक्रिया है घर्षण की, फ्रिक्शन की। विज्ञान कहता है विदाउट फ्रिक्शन देयर इज नो क्रिएशन। अब इसी बात को मर्यादा समझें, घर्षण से माता पिता में विस्फोट हुआ, हम उसे खून के नाम से कहेंगे, बाकी नाम है लेकिन हम लोग उस नाम को नहीं लेते क्योंकि हमारी एक मर्यादा है। एक घर्षण से पिताजी के खून का विस्फोट हुआ, अगर मेरे पिताजी घर्षण न करते या मेरे पिताजी कमजोर होते तो इस घर्षण से भी कोई लाभ होने वाला नहीं था। दो शक्तियों में जब घर्षण होता है तो उसमें से तीसरी चीज का जन्म या प्रगट का स्वरूप हम देखते हैं। या विचार करो, पिता के विस्फोट से खून मेरी माँ ने स्वीकार किया, इसके बाद कुदरत अपना काम करती है। वो जो विस्फोट है छांदोनिषद में उसका इशारा किया गया, जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, वह लिक्विड है, शून्य है, उसमें कोई आकार नहीं। लेकिन कुदरती हम गर्भ में लार्वा, शून्य से लार्वा, लार्वा से मेढक और छठे महीने में वानर और सातवें में वाकट के नर या नारी बनते हैं। एक प्रक्रिया हमारे आपके हाथ में है लेकिन आगे की रचना ये कुदरती है। फिर हमें प्रकट होते हैं, परमात्मा को कहा गया सच्चिदानंद, जो आज का विषय आनंद और परमानंद। हमारे आपके शरीर में जो आकाश और वायु तत्व है वो विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा आपका शरीर पंच महाभूत से बना, पुत्र या पुत्री के रूप में आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, विज्ञान ने से एनर्जी माना, हमने कहा नास्तो विदते भाव ना भाव विदते सता, आकाश है वायु है कोई इसकी रचना करने वाला नहीं है, ये हमेशा है, इसका अभाव नहीं है। वैज्ञानिकों ने कह दिया ये पांच चीज एनर्जी है, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, ये है, इसका केवल रूपांतर होता है आपके संकल्प से, बाकी एनर्जी को न कोई बनाने वाला है न कोई बिगाड़ने वाला है, ठीक है और नहीं, यही बात हमने भी वेदों में कहा, उसे हम प्रकट करते हैं। तो जा विचार कीजिए, आप सुनते हैं आपको आनंद आए, आप देखते हैं आपको आनंद आए, जब सुनने में आनंद नहीं आता तो आप हट जाते हैं, देखने से जब आनंद नहीं आता तो आप हट जाते हैं, भोजन से भी जब आनंद नहीं आता तो भोजन नहीं करते। हमारा सुनना, हमारा देखना, भोजन करना, बोलना, आपसे मिलना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर में जाना, कीर्तन करना, इसके पीछे रहस्य है आनंद का। भले उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है लेकिन लक्ष्य आनंद का है, दुख का नहीं है। अगर है कि कीर्तन करने से, योगाभ्यास करने से अगर दुख मिलेगा तो कोई प्रयास या पुरुषार्थ या कष्ट नहीं पाएगा। लेकिन एक छिपी हुई शक्ति है कि भले मैं कष्ट उठा रहा हूं लेकिन जीवन में सफलता मिलेगी और सफलता के आनंद का हिस्सेदार मैं बनूंगा। भले हम दुख उठा रहे हैं लेकिन लक्ष्य सुख का है। अब यही देखना है, सुनते सभी हैं लेकिन क्या सुनना है, देखते सभी हैं लेकिन क्या देखना है, बोलते सभी हैं लेकिन क्या बोलना है, और ये सब व्यवस्था हमारे और आपके लिए है जिसका संबंध है संस्कार से। हमें किसी की नकल नहीं करनी है। पूरे विश्व में ऐसे लोग हैं जो संस्कार से हम एक दूसरे को सूत्र में नहीं बांध सकते, लेकिन विचारों से बांध सकते हैं। सबका भला करो, सत्य बोलो, प्रेम करो, इसमें जाति पाति का कोई आधार नहीं है। और जन्म से हर आदमी सत्य और प्रेम के पक्ष में है। खाने पीने की बात, शादी विवाह की बात, ये संस्कार से है। हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम का अलग है, ईसाई का अलग है, बुद्धों का अलग है, लेकिन जो फंडामेंटल चीज है जिसे हम सनातन कहते हैं, जो जन्म से लेकर आए, सनातन का अर्थ है जो जन्म से लेकर आए, जिस शक्ति को बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वो शाश्वत है। बड़े प्यार से कहूँ, धर्म सत्य और प्रेम का आधार लेता है और सत्य प्रेम हमें जोड़ता है। अब जा विचार कीजिए, कोई संप्रदाय वाला, कोई जाति वाला विश्व में कहीं भी जन्मा है, लेकिन जन्म से सत्य और प्रेम के पक्ष में जो सनातन है। सत्य का पिता कौन, प्रेम का पिता कौन, ये आप जन्म से लेकर आए। लेकिन संप्रदाय की बात करूं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ईसाई है, विज्ञान इसे कहता है सेकंड नेचर, जो सुनने और देखने से एक हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है। संप्रदाय की बात करो, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये असमाजी है, ये हिंदू है, ये संस्कार से है। और संस्कार बनाने वाला कोई विशेष पुरुष है। जैन धर्म किसी विशेष पुरुष से, महावीर से है, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध से है, हम प्रणामी हैं भगवान कृष्ण से है, हम वैष्णव हैं, हम सन्यासी हैं, हम उदासी हैं कि कबीरपंथी हैं, इसके पीछे किसी महापुरुष की शक्ति है। लेकिन सत्य और प्रेम का कोई जनक नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, आप जिसे मानते हैं, आप जैन हैं, जैन में भी प्रेम और सत्य है, आप मुसलमान हैं, भले मस्जिद जाते हैं लेकिन कुरान में भी सत्य और प्रेम की बात है, आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उसमें भी सत्य और प्रेम की बात है। तो सत्य और प्रेम इस सनातन इसलिए है कि एक कोई सिखाता नहीं और इसका कोई जनक नहीं, इसलिए सनातन है, था है और रहेगा। बड़े प्यार से कहूं, झूठ बोलने वाला भी सत्य की कदर करता है, हिंसा करने वाला भी प्रेम की कदर करता है, घृणा करने वाला भी चाहता है कि लोग मुझे प्रेम करें। ये हमारा स्वभाव है स्वतः। कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, उसकी संतान अगर झूठ बोले तो थप्पड़ लगाता है, परिस्थिति बस कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन वो चाहता है मेरा पुत्र झूठ ना बोले। सरकार कभी कभी जेल में भी मुझे लेक्चर देने के लिए भेजती है, वहां लोगों से मिलता हूँ, हर बात से पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को अपराधी बनाओगे, नहीं, एक अपराधी भी परिस्थिति समय ने उसे बना दिया, एक अपराधी भी परिस्थिति समय से बना, लेकिन अपने बेटे को अपराधी चोर बदमाश बनाना नहीं चाहता। अंदर का जो संस्कार है, अंदर का जो बाप है, वो कभी नहीं मरता, अर्थात जो अंदर की अच्छाई है वो कभी नहीं मरती। हर आदमी स्वयं भले अच्छा ना हो, लेकिन अंदर से अपने बच्चों का अच्छा बनाना चाहता है। मनोविज्ञान कहता है कि बुरा व्यक्ति भी अपने बच्चों का अच्छा बनाना चाहता है, इसका मतलब अंदर से उसको अच्छाई ही पसंद है, लेकिन परिस्थिति ने उसे डाकू चोर या बदमाश बना दिया। इसलिए सनातन है तो सत आप हैं, हमारे आपके पिता में माँ में विस्फोट हुआ, शून्य खून शून्य के रूप में माँ ने धारण किया, वह शून्य देखिए लार्वा मेढक बानर फिर बना और विज्ञान आता है कि शून्य कोई भी आकार धारण करेगा लेकिन आकार मिटेगा तो शून्य ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने मिट्टी में से घोड़ा बनाया, आपने मिट्टी में से शेर बनाया, मिट्टी एक शून्य है, आपके संकल्प ने शून्य आकार लेता वह मिट्टी शेर बनती है, वह मिट्टी हाथी का आकार लेती है, घोड़े का आकार लेती है, लेकिन विज्ञान कहता है अस्तित्व जब आकार लेता है, नाम आपने दिया लेकिन है तो पूरी मिट्टी की मिट्टी, आपने मिट्टी में से घोड़ा बनाया है तो पूरी मिट्टी, आकार से घोड़ा का, ये आकार जब मिटेगा तो फिर शून्य अर्थात आप मिट्टी में आ जाएंगे, घोड़ा मिट्टी में आ जाएगा। तो हमारे पिता ने जो शून्य मेरी मां ने धारण किया बना, अब देखिए विज्ञान कहता है कि कितना आकार बन जाए लेकिन जो शून्य है जिसका कोई आकार नहीं है वो पूरे के पूरे उसमें मौजूद रहेगा, मिट्टी शून्य है, इसको समझिए, शून्य मतलब है लेकिन इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन आकार जब बनेगा तो पूरी मिट्टी होगी। हमारे ऋषियों का एकम सत विप्ला शून्य नाम सत हमने दिया, बुद्ध ने शून्य कहा और वैज्ञानिकों ने अस्तित्व कहा, ये नाम की बात। मैं आपको बेटी बोलता हूं, कोई आपको माँ बोलता है, कोई भाभी बोलता है, कोई चाची बोलता है, मेरे पिता जिस रूप में देखते हैं तो आप मेरे पिता के लिए क्या, मेरे पिता के लिए पत्नी है लेकिन मेरे लिए तो माँ। जा विचार कीजिए आपके कितने नाम है लेकिन है तो आप वही के वही, लेकिन कालांतर में न समझने से बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे वेदों ने कहा सर्वदम फल ब्रह्म, वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पहले यही प्रश्न किया और वो मान गए। विज्ञान के आधार पर जिस चीज की खोज होती है उसे पूरी दुनिया मान लेती है, लेकिन वेद का जो मंत्र मैं सुनाता हूँ मान तो जाते हैं लेकिन पूरी दुनिया स्वीकार नहीं कर रही है जो धर्म के नाम से कहा गया, धीरे धीरे करेंगे। अब देखिए जब कहते हैं सर्वदम फल ब्रह्म, आपको भगवान बनाना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा सब में परमात्मा है ब्रह्म है। अब जब वैज्ञानिकों सामने प्रवचन करता हूं कि सोने का आकार है कि चांदी का आकार है मिट्टी का आकार है पानी का आकार है, एक गिलास लंबा है एक छोटा है एक टेढ़ा है एक पीला है एक काला है एक लाल है, हर गिलास में आपने पानी भरकर रखा, पानी कहाँ काला है, गिलास काला है इसलिए काल दिया, पानी कहाँ पीला है एक आकार लिया, गिलास टेढ़ा एक आकार लिया, पानी कहाँ टेढ़ा है। तो जो शून्य है वो पूर्ण है, पूर्ण टेढ़ा नहीं होता, पानी पूर्ण है, वो आकार के कारण गिलास के कारण आपको लाल पीला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है तो पानी मिट्टी में से बुरा न मानिए, आप मूर्ति को सीधा भी बना सकते हैं टेढ़ा भी बना सकते हैं, मूर्ति टेढ़ी है मिट्टी तो वही की वही है। आप सोने से अपनी बेटी के लिए बंदी बनाते हैं और नेकलेस बनाते हैं बकरी जो बंगड़ी है या विचार के उसका आकार अलग है, जो बेटी का नेकलेस है उसका आकार अलग है, लेकिन है तो पूरी सोना। अब इसी तरह से बड़े प्यार से कहता और बड़ी मर्यादा से बोलता। जब ऋषियों ने कहा सब में परमात्मा है तो वही सिद्ध कर रहा। जब हम जिस शून्य में से मेरा सर्जन हुआ, उस शून्य घर्षण से पैदा हुआ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, आकाश के घर्षण शब्द आया, आकाश वायु के घर्षण से प्रसार हुआ या विचार किया, फिर घर्षण से अग्नि आई, फिर घर्षण से पानी आया, फिर पृथ्वी आई। अब देख लीजिए, आकाश का गुण शब्द, वायु का शब्द और स्पर्श, अग्नि का शब्द स्पर्श रूप, जल का शब्द स्पर्श रूप और रस, और धरती का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी के पांच गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। गंध कहीं आसमान से नहीं आई, ये पानी में छिपी थी। पानी के चार गुण शब्द स्पर्श रूप और रस, गंध छिपी है जो एक व्यवस्था से धरती में प्रकट हुई। तो पानी के चार गुण गंध उसमें छिपा है जो धरती में प्रकट होता है। अग्नि के तीन गुण शब्द स्पर्श रूप, या विचार कीजिए, ये रूप वायु में छिपा और अग्नि में प्रकट हुआ। वायु के दो गुण शब्द और स्पर्श, ये स्पर्श आकाश में छिपा और वायु में प्रकट हुआ, और आकाश के गुण है शब्द। आप अपने ब्रह्मांड को देख लीजिए, शब्द ये कान सुनता है, स्पर्श या विचार के, अग्नि आंख, शब्द स्पर्श रूप अग्नि का स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप और रस जिह्वा, और गंध नाक, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ब्रह्मांड में से अंतरिक्ष में से हम प्रकट होते हैं, तो जैसे आपने अंतरिक्ष कहा हमने ब्रह्मांड कहा। आप आइंस्टाइन कहता है अल्बर्ट आइंस्टाइन कि अंतरिक्ष में से हर चीज प्रकट हुई और जहां से प्रकट हुई वापस जाएगी। हमने कहा हम परमात्मा में से आए और वापस परमात्मा में जाए। वैज्ञानिक जैसे अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहते हैं उसी को हम परमेश्वर मानते हैं, वहां भी ये चीज है। तो जहां से हम आए हैं वहां वापस जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति पुत्र या पुत्री के रूप में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति लेके पैदा हुए हो। पशु इसका प्रकटीकरण नहीं कर सकता, वो आहार निद्रा भय, उसमें आहार का गुण है हम में भी है, नींद का गुण है हम में भी है, भय पशुओं में भी है। शेर बहुत ही बलवान है लेकिन आग से डरता है। आहार निद्रा भय की बात पशुओं में भी है, परिवार बढ़ाने की बात पशुओं में भी है, और चार गुण हम में भी है। हमारे यहाँ पशु धर्म कहा गया एनिमल पल्चर, विज्ञान ने कहा इंट्यूशन, अर्थात आहार की खोज, नींद की बात, भय की बात और परिवार बढ़ाने की बात। ये पशु भी जानता हम भी जानते हैं। हमारे आपके अंदर नर और नारी में ईश्वर और परमात्मा ने 10% इंटेलेक्ट दे, बुद्धि सोचने की, विवेक की शक्ति। आप देखिए विज्ञान कहता है पशु रो सकता है लेकिन हंस नहीं सकता। हम आप रो भी सकते हैं और हंस भी सकते हैं, लेकिन विचार कीजिए बुद्धि के कारण, इंटेलेक्ट का। अगर हम रोते हैं तो पशु में आए और हंसते हैं तो देवता में आए। इसलिए आज विज्ञान कहता है कि कुदरती रोने का गुण पशुओं को मिला लेकिन हंसने को नहीं मिला, और आज हंसने के लिए हमें क्लब में जाना पड़ रहा है। हमारा विज्ञान भी कहता है अगर पुत्र पुत्री नर नारी हंसें तो जिम्मेदार व्यक्ति के सामने समस्याएं आएंगे, लेकिन हंसने वाला समस्या को जल्दी समस्या में से निकल सकता है, उसका समाधान कर सकता है, लेकिन रोने वाला स्वयं समस्या बनाता है। जब हम स्वयं समस्या बनाएंगे तो निकलेंगे कैसे? इसलिए कुदरती हमारे आप पे दोनों गुण है, रोने का और हंसने का। लेकिन सुनो, देखो, भोजन करो, बोलो, चलो, जहां आपको हंसने की बात मतलब सफलता की बात मिले। आप सफल हो गए तो हर व्यक्ति के हाथ में फूल है, और निष्फल बनोगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। मनोविज्ञान कहता है जब हम रोते हैं तो आंख का आंसू खारा है, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो हमारे पसीने में भी खारापन है, नमक है। मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं अरे मानव, तू रोएगा तो सहानुभूति मिलेगी, अभिनंदन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम आंसुओं को पसीने में बदल दो। जो तुम रोते हो इन आंसुओं को श्रम से, मेहनत से पसीने में बदल दो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। रोने से केवल सहानुभूति मिलेगी और सफलता से अभिनंदन मिलेगा। यही मैं आपसे कहता हूं, कैसी भी परिस्थिति हो, रामायण में एक से एक विकट परिस्थिति आई, कृष्ण साथ में है, पांडवों के सामने भी एक से एक विकट परिस्थिति आई। एक परिस्थिति में कृष्ण देख रहे अर्जुन भाग भी रहा, सिर पर हाथ बैठ करके हताश निराश हो गया। हमारे कृष्ण ने न गांधी बदला, न नाम बदला, न कपड़ा बदला, किस कारण हताश हुआ था उस विचार को विचार से दूर कर दिया। आपके पास सब कुछ है, लेकिन कोई भविष्य की बात है जो आपके हाथ में नहीं है। हताशा और निराशा है जो आपका स्वभाव नहीं है। आप सफलता चाहते लेकिन किसी के कारण आपको निष्फलता मिल गई। अगर आप महाभारत पढ़ें तो विज्ञान की बात कही गई है, ये जगत की ऐसी रचना दो परिबल रहेगा। जब विदुर का और भीष्म पितामह का संवाद होता है, उद्योग पर पढ़िए, तो वहां पर यही कहा है कि भीष्म पितामह ने कि मैं अपनी जगह ठीक था, लेकिन दुर्योधन को सलाह देने वाले गलत थे। एक उसका मित्र कर्ण और एक उसका मामा शकुनी। और जा देखिए, आज भी आपको बताता हूं, आप मित्र से सलाह लें कि मामा से कि रिश्तेदार से, लेकिन मनोविज्ञान कहता है सलाह सबसे लो, लेकिन सोचो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। और यही ठीक समझिए, आत्मसर्वभूतेषु, जो चीज मेरे लिए नहीं ठीक है वो किसी के लिए नहीं ठीक है। अगर मुझे कोई गाली देता है तो गाली मुझे नहीं अच्छी लगती, तो हमें भी किसी को गाली नहीं देना है। मेरा कोई अपमान करे तो नहीं ठीक लगता, तो हमें किसी का अपमान नहीं करना है। मेरा हिस्सा कोई ले ले तो नहीं अच्छा लगता, तो हमें भी दूसरे का हिस्सा नहीं लेना है। तो या देखिए, उस संवाद में यही आया है कि दुर्योधन इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसके सलाहकार अच्छे नहीं है। वो हमसे नहीं सलाह लेता, वो लेता है कर्ण से, मित्र से। और मित्र जब सलाह देगा, बड़े प्यार से कहता हूं, अपना स्थान बना के देगा। अब मनोविज्ञान आए, करने सलाह क्यों नहीं दी? हमारा भगवान कहता है चल दुर्योधन तू पांच गांव दे दे और राज कर। कर्ण का क्या विचार है? ये मनोविज्ञान। अर्जुन के सामने मैं ही लड़ सकता हूं, अगर इन दोनों का मेल हो गया दुर्योधन और अर्जुन का तो मेरी जगह मेरा स्थान खाली हो जाएगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मनोविज्ञान कहता है सलाह लो, मित्र से रिश्तेदार से मामा से सबसे सलाह लो। लेकिन यहां बड़े प्यार से कहूंगा सबसे अच्छी सलाह मां की होती है, उससे अच्छी सलाह पिता की होती है और सबसे अच्छी सर्वोत्तम सलाह गुरु की होती है। हाथ जोड़ के कहता हूं संभव है कि मां की सलाह में भी थोड़ी पक्षपात की बात हो, संभव है पिता की सलाह में भी थोड़ी पक्षपात की बात हो, मित्र की सलाह में भी हो, रिश्तेदार की सलाह में हो, लेकिन गुरु निष्पक्ष होता है। इसलिए कहा गया सबसे अच्छी सलाह गुरु की होती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा जो आपका गुरु है वो हमेशा वो सलाह देगा जिसमें आप सफल बने। और कहना नहीं चाहिए, बड़े प्यार से कहता हूं हमारे किसने कर्ण को कहा तू मेरा प्रिय है, तू मेरा शिष्य है। मित्र के बाद शिष्य बना, शिष्य हम तो हम साथ माम शरण प्रपन्न, मैं तेरा गुरु हूं, गुरु का धर्म है कि शिष्य की सफलता को देखे। इस समय कर्ण की बात न कर, कर्ण मेरा शिष्य नहीं है, मेरे शिष्य का दुश्मन है और मेरे शिष्य को तैयार करना है कि दुश्मन हार जाए। इसलिए मैं कहता हूं कर्ण को मार। और गुरु जब सलाह देता है तो गुरु भगवान का रूप है, वो किसी ईष्ट को मानता है। इसलिए बड़े प्यार से कहूं गुरु की सलाह पर चलोगे तो ना आपको पाप लगेगा ना गुरु को लगेगा। पाप तो उसको लगता है जो स्वार्थ की बात करता है, गुरु को कभी पाप नहीं लगता। आज मेरा चेला मान लीजिए किसी गलती से उसकी सजा होनी है तो माता पिता गुरु को पाप नहीं लगता। माँ का काम है बचाना, पिता का काम है बचाना, गुरु का काम है बचाना। रही बात कर्म की, हम कितनी सिद्धि प्राप्त कर लें, कितने बड़े गुरु बन जाए, लेकिन हमारे धर्म में अंधविश्वास की बात नहीं। द्रोणाचार्य जी गुरु हैं, भीष्म पितामह परम शक्तिमान इच्छा मृत्यु वाले, लेकिन कृत कार्य हमारे ऋषि मुनियों ने किसी को नहीं छोड़ा। कर्म से तपस्या से तुम सिद्धि प्राप्त करोगे, आप गुरु हो गए, माता पिता बन गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी दुर्योधन को समझाया भी नहीं कि पांडव हिस्सा दे दो। अर्थात मैं आपका गुरु हूं, कुछ भी करो आपको संकट से निकालूंगा। लेकिन सामने द्रोणाचार्य जी हैं, वो भी गुरु है, लेकिन दुर्योधन को कुछ समझाया नहीं। अब ये समझिए जब गुरु को पता चले कि मेरा चेला गलत है, समझाइए उसका रास्ता बताइए। द्रोणाचार्य जी को मालूम है दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी सलाह नहीं दी। इसलिए कृष्ण ने एक व्यवस्था दी, जब गुरु ठीक सलाह चेले को नहीं देता और चेला असत्य पर चलता है और दूसरे का हिस्सा लेना चाहता है तो गुरु का भी सत्यानाश होगा और चेले का भी सत्यानाश होगा। ये व्यवस्था है, आप ठीक हैं किसकी बात को लीजिए। अर्जुन मुझे नियम ना बता, ये कर्ण ने क्या क्या किया याद दिला। जिस तरह इन लोगों ने अभिमन्यु को मारा वो धर्म था? कहा नहीं। जिस तरह लक्षागृह में आग लगाई वो धर्म था? कहा नहीं, जिस तरह छल कपट करके मामा को मिला के जुआ खेलाओ धर्मता। कहा नहीं, भरी सभा में नारी द्रौपदी, भरी सभा में नारी का अपमान करना ये धर्म है इन पुरुषों का? कहा नहीं। कहा ये जब धर्म नहीं जानते तो इन पापियों को मारने में कोई पाप नहीं है, इसलिए इनको मारो, चाहे गुरु हो चाहे पितामह हो चाहे कोई भी हो। तू धर्म की बात करता है, ये कौन सा धर्म निभाए? यही मैं आपसे कहता हूं, हमें धर्म निभाना है, लेकिन गलत ढंग से हमारी संस्कृति को, हमारे हिस्से को, हमारी बेटी को, हमारी बहू को भरी सभा में कोई अपमान करेगा तो चाहे कोई हो। एक बार जब मैं अयोध्या गया तो मैं इसे पूछा गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप मुझे बताइए, महाभारत के आधार पर गलत व्यक्ति की मदद करने पर अगर सलाह देते देखा जाता, विदुष क्यों चले गए? वो जानते थे कि न्याय नहीं हो रहा। हाथ जोड़ के मैंने कहा बताइए, अत्याचारी की मदद करने में हमने सपनी मामा को नहीं छोड़ा, गुरु द्रोणाचार्य को नहीं छोड़ा, भीष्म पितामह उनको नहीं छोड़ा, तो इस देश के प्रति किसी भी तरह कोई देश अत्याचार करेगा, इसलिए मैं कृष्ण के वंशज में हूँ, वो जगत गुरु थे, मैं गुरु हूँ, इसलिए भारत को कहूँगा ये आतताइयों को मारने लड़ने में चाहे कोई हो कोई पाप नहीं। मैंने कहा बोलो, सभी धर्म वाले बैठे, कोई नहीं जवाब दिया। हमारी संस्कृति अंधविश्वास की नहीं है, मैं गुरु की पूजा करूंगा, पितामह की पूजा करूंगा, मामा हमारे नजदीक पूजा करेगा, लेकिन मामा भी मेरे घर को मेरे बच्चों को बुरा न मानिएगा। एक कहावत है, बड़े प्यार से कहता हूं, मैं सत्य का आधार लेके बोलता हूं, जाति पाति करें। एक पुरानी कहावत है कि बेटे को बदमाश करना है तो मामा के घर में रखो। मैंने कहा नहीं, बेटे को बिगाड़ना है तो मामा को अपने पास रखो। वो सपनी आया, अब समझ जाइए। कभी आपने देखा दुर्योधन को गुरु के पास बैठते? कभी देखा पितामह के पास? कभी देखा माँ के पास? कभी पिता के पास देखा? जब भी मौका मिला तो कभी मित्र के पास, कभी मामा के पास, दोनों मिल करके अपना काम बनाने के लिए दुर्योधन का सत्यानाश किया। इसलिए आपको कोई भी सलाह दे अगर नहीं समझ पाए तो अपने गुरु से पूछो, और चाहे मित्र हो कि रिश्तेदार हो तुरंत निर्णय मत लो। ऐसा क्यों बोल रहा है? कितने मैं व्यवहार की बात नहीं जानता, लोग मुझसे कहते हैं, मैंने कहा भी शंका न करो, मैं जो रास्ता बताता हूं करो फिर। कितने लोगों का मैंने घर बनाया, इसलिए बनाया तो गुरु का विश्वास कर, ऐसी कोई बात नहीं है, तो परीक्षा लेनी है तो इस तरह ले। सुनने के मतलब क्या, रामायण आप पढ़ते हो, जिस धोबी को राम ने देखा नहीं, जिसके साथ परिचय नहीं था, उसकी बात सुनकर के राम ने कदम उठाया, लेकिन राम की लीला। आप अपने गुरु को पहचानते, उसकी बात क्यों नहीं मानते? स्वामी जी लोग ऐसा कहते, कौन कहता है? तुम उसे जानते हो? मैं आप लोगों की बात बता दूं, पति पत्नी का भी किस्सा मेरे पास आता है। मैंने कहा शादी हुए कितने साल? कहते 4 साल। मैंने कहा 4 साल में कोई धोबी नहीं मिला, अभी ये 4 साल के बाद कौन धोबी मिल गया जो शंका पैदा कर रहा है? मैं गुरु हूं कह रहा हूं, ये सब स्वार्थ की बात है, कोई आपको लड़ाना चाहता है और पता लगा। इसलिए जो मैं आपको आनंद की बात, परमानंद की बात बताना चाहता हूं, हम आप हमारे यहां माता पिता को भगवान का रूप माना गया, शिव शक्ति का रूप माना गया, अब विज्ञान से सिद्ध करता हूं। शिव शक्ति का स्वरूप परमात्मा माता और पिता, उनसे हम आए तो उनका गुण हमारे में, लेकिन गड़बड़ी कहां पैदा हुई? पहले तो आपके माता आपके पिता शिव और शक्ति विज्ञान और वेद दोनों का है। बहुत जल्दी बता दूं, आपके पहले पिता की बात लीजिए, आपके पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, विज्ञान भी कहता है ये जो सामने है उसके पिता थे, पिता थे, पिता थे, और ये शिव तक जाएंगे, पिता 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 शिव तक, और मेरी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ये शक्ति तक जाएंगे। इसलिए क्रम देखिए तो हर पुरुष शिव का स्वरूप है, हर नारी शक्ति का स्वरूप है, लेकिन जो सेकंड नेचर में बात आई, आप लोगों की बात सुन के परेशान हो गए, देख के परेशान हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया और ये ठीक करना आपके हाथ में, पशु के हाथ में नहीं है। पशु अपने ढंग से जी लेगा, इसलिए इंद्रवदन आपने आत्मा परमात्मा की बात की, आनंद और परमानंद की बात की, हम जो हैं वही हो सकते हैं। अगर हम दुखी होते तो सुख नहीं मिलता। विज्ञान कहता है अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, वहां पर प्रकाश नहीं है, दुनिया में कोई दुखी नहीं है, दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आपने सुनकर देख करके सोच करके बिना अस्तित्व के आनंद के अभाव में, जैसे प्रकाश के अभाव में अंधेरा है, ऐसे आनंद के जाते ही परेशानी आ जाती है जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहां से प्रकाश गया तो अंधेरा आ गया। अब जा देखिए, आपके कमरे में मैं आया, आपने स्विच ऑन की, आपको देखा, टेबल को देखा, कुर्सी को देखा, तो अंधेरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? अंधेरे कोई अस्तित्व नहीं है। विज्ञान कहता है प्रकाश का अभाव अंधेरा है, प्रकाश नाम ये आनंद का है, आनंद का अभाव ही दुख है, बाकी दुख का अस्तित्व होता तो जैसे आपके कमरे में टेबल देख रहा हूं, कुर्सी देख रहा हूं, किताब देख रहा हूं, ऐसे कितने भी साधना करके आप जाते, लेकिन दुख कभी हटने वाला नहीं। इसलिए दुख तो आप बना रखे क्योंकि वहां पर आनंद नहीं है। तो इंद्रवदन जी, सच्चिदानंद अस्तित्व आप है, और जितने पुरुष हैं शिव के स्वरूप है, जितनी हमारी बेटियां हैं इस शक्ति का स्वरूप है, और माता पिता से मेरा जन्म हुआ इसलिए शिव शक्ति की शक्ति लेकर के हम जन्म लिए हैं। इसलिए भगवान शंकर को अर्ध नारीश्वर माना गया, आधा पुरुष अर्थात आधा शिव और आधा शक्ति, इसी के मेल से शक्ति का जन्म होता है। और कहते हैं या विचार करो, स्वामी जी हमें भगवान कैसे मिलेगा? मैंने विज्ञान से कहा था, आपके सामने मूर्तियां हैं, ये हनुमान की मूर्ति, ये गणपति की मूर्ति, ये शिव जी की मूर्ति, ये राम की मूर्ति, ये कृष्ण की मूर्ति, लेकिन अगर आप एक सुनार है, एक सोनी है, तो आप जानते हैं सब में सोना है, सोने ना काल दिया, भले हनुमान जी है लेकिन पूरे सोने के हैं, भले गणपति पूरे सोने के हैं। अब इसी तरह से मेरे प्रिय आत्मन, वह शून्य जब आकार लिया तो शून्य का जो सत है, जो अस्तित्व है, पूरा आकार धारण किया, वो शून्य लार्वा बना, उसमें से मेढक बना, छठे महीने वानर बना, फिर हम बने। तो विज्ञान आता है, जो चीज जहां से चलती है कितना भी आकार ले उसमें मौजूद रहती है, इसलिए पानी कहीं से भी लाइए उसका गुण सब जगह रहे। आप पानी नदी का खेत में लाइए कि बाथरूम में रखिए कि लैट्रिन में रखिए, लेकिन गुण तो वही होगा। इस तरह से प्रिय आत्मन जब इस गुण को पहचान लोगे तो भगवान खोजने की जरूरत नहीं है, जो भी दिखाई पड़े चाहे पेड़ दिखाई पड़े, नदी दिखाई पड़े, राम दिखाई पड़े, डॉक्टर दिखाई पड़े, इंजीनियर दिखाई पड़े, रिश्तेदार दिखाई पड़े, कोई दिखाई पड़े, वो भगवान का ही आकार है। इसलिए भगवान को ढूंढो मत, जो दिखाई पड़े उसी में भगवान देखोगे तो तुम देखते देखते स्वयं उसी रूप के हो जाओगे, भगवान की खोजने की कोई जरूरत नहीं। विज्ञान कहता है जो थिंग सो बिकम, आप किसी को चांडाल देखोगे तो आप चांडाल बन जाओगे, विज्ञान कहता है। इसलिए कहा गया सब में परमात्मा देखो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, आज विज्ञान भी मान रहा है। एक ही सत से घोड़ा बना और गधा बना, लेकिन गधे का चित्र जब देखेंगे तो गधे का विचार आएगा, गधे का चित्र हमारे अंदर बनेगा, जो हम सुनते हैं देखते हैं उसका चित्र बनता है। अब याद रखिए, इसलिए गधे में वो परमात्मा का आकार है तो गधा तो परमात्मा नहीं बनेगा, लेकिन विज्ञान कहता है कि हम गधा नहीं बनेंगे। शेर देखेंगे, शेर में भगवान देखेंगे तो हमारे अंदर उसकी ताकत आएगी। ये आपका जो सुमो बना, ये क्यों बना? एक गरीब घर का लड़का समुद्र के किनारे गया और समुद्र की विशालता को देखकर देखा कि थोड़ा पानी पिया, अरे कहा पूरा समुद्र इसी गुण का है, तो मैं भले इस ब्रह्मांड में छोटा हूं लेकिन मैं भी विशाल बन सकता हूं। घास खाया, ये खाया, वो खाया, जिसके नाम से सोमा बनते हैं। विचार उसकी कहानी पढ़िए। तो इसलिए मेरे प्रियात्मन, इन बदन आज विषय दिया आनंद और परमानंद, आप आनंद में से आए, उसका विशाल स्वरूप परमानंद है। अगर आनंद की अनुभूति करना चाहते हो तो सब में अपने को देखो, परमात्मा को देखो, और आपको कमजोर नहीं बनाता। लेकिन अगर समाज में कोई रावण है, कोई कंस है, कोई दुर्योधन है, तो समाज की रक्षा में हमें जो नियम का पालन करना चाहिए करना पड़ेगा। मेरा हाथ मेरा है, पिंड मेरा है, लेकिन हाथ में कैंसर होगा और डॉक्टर सलाह से उसे कटवाएंगे। इसलिए पूरी बसदा को बसदाई तू कुटुंब कम, पूरी बसदा को हम कुटुंब मानते हैं, लेकिन जो भी सड़ेगा हमारी संस्कृति के हिसाब से गलत सलाह देगा, हमारी पृथ्वी समाज की व्यवस्था को बिगाड़ेगा, वो चाहे मामा हो, चाहे गुरु हो, चाहे पितामह हो, और चाहे कोई देश हो, उसके मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसी की तैयारी में आपका कीर्तन है, सत्संग है। हमारे कृष्ण ने अर्जुन को अधर्म के खिलाफ तैयार किया, गुरु खिलाफ नहीं किया, पितामह खिलाफ नहीं किया। ये लोग कितना अधर्म किए, अगर तू इस तरह संन्यास ले लेगा तो इनका अधर्म बढ़ेगा, समाज में आकर के तेरी जिम्मेदारी समाज की रक्षा करना, उसी धर्म की रक्षा में मैं तेरे साथ हूं, दुर्योधन की रक्षा में ये है, इनको सिद्धियां प्राप्त है। तेरे को शंका हो रही है कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले कैसे मरेंगे, द्रोणाचार्य जी पुत्र के मरण का समाचार सुनेंगे तब मरेंगे, इसलिए शंका मिटा। अब आज की बात करो, कितनी सिद्धि प्राप्त कर लो, कितना पद प्राप्त कर लो, कितना पैसा प्राप्त कर लो, गलत करोगे या गलत की मदद करोगे, उदाहरण मेरे पास बहुत है, लेकिन एक उदाहरण दूंगा। हरियाणा का आईजी आर के शर्मा, गरीब घर का लड़का, कर्म से श्रम से इंडियन पुलिस सर्विस में आकर धीरे धीरे आईजी बना, लेकिन एक गलती किया तो पद भी गया, धन भी गया, इज्जत भी गई, सिद्धि भी गई, और आजीवन कारावास भोगना पड़ा। विज्ञान कह रहा है एक माइनस सारे प्लस को माइनस कर देता है। इसलिए आइए हम आप भगवान को साथ रख के, हम किसी का गलत सुने नहीं, गलत देखे नहीं, किसी का हिस्सा दबाए नहीं, गलत जगह नहीं जा, इस तरह अपनी तैयारी करो। इतनी तैयारी करने के बाद भी जब राम के समय में रावण था, किसके समय दुर्योधन था, तो आज भी नाम बदल बदल करके लोग हमें आपको परेशान करेंगे। लेकिन मैं आपको भारतीय संस्कृति के आधार पर कहता हूँ, चाहे कोई कितना पहाड़ आपके सामने जाए, लेकिन आपका सुनना ठीक है, आपका देखना ठीक है, आपका हक ठीक है, तो मैं आपको बड़े प्यार से कहता हूँ, ये पहाड़ भी आपके सामने चकनाचूर हो जाएगा, आपको कोई कुछ नहीं आ सकता। रावण ने क्या सोचा, ये बानर भालू को साथ लेकर चलने वाला, जिसकी माँ ने घर से निकाला, जो जंगल जंगल भटक रहा है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अंत में पता लग गया, भले हमारा सच, भले हमारी भलाई हमें घर से निकाल दे, हमारी सज्जनता भले जंगल में भटका दे, हमारी सज्जनता में विकट से विकट परिस्थिति आएगी, लेकिन आज पूरा विश्व कहता है जहां सच्चाई है वहां ताकत है, और रावण यही देखा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। इसी तरह दुर्योधन को लगा कि मैंने 400 बीसी करके जंगल जंगल भटका दिया, एक साल का ज्ञातवास दिया, फिर तरकीब करूंगा, फिर छलकपट करूंगा, आने नहीं दूंगा। लेकिन याद रखिए, हमारे आपके ऊपर भी कोई व्यवस्था करने वाला है कोई व्यवस्था करने वाला। और अंत में चाहे पिक्चर देखो, चाहे रामायण देखो, चाहे महाभारत देखो, लेकिन अंत में जो बदमाश है उनका ही सत्यानाश होगा। आप परेशान होंगे लेकिन विजय आपको मिलेगी। मगर विज्ञान कहता है हम अच्छे रास्ते चल के परेशान होंगे, लेकिन गलत आदमी थोड़े दिन हंसेगा कूदेगा, लेकिन विनाश उसका होगा। तो मैं आपसे कहा, आप परेशान हो सकते हैं लेकिन विनाश नहीं होगा। और जो लोग मेरे आपके अच्छे खिलाफ लड़ रहे हैं, गलत कर रहे, चाहे व्यक्ति हो कि देश हो, एक दिन उनका विनाश हो जाएगा। ये भारतीय सांस्कृतिक आधार पे करता, उनका विनाश है, हमें परेशानी है। इसी परेशानी को स्वीकार कर लीजिए तो तपस्या, बिना तप के शक्ति नहीं तपो ब्रह्म। राम ने तप किया शक्ति आई, पांडव ने तप किया शक्ति आई। तो ये परिस्थिति में जो आए उसे स्वीकार करो, ये दुख रही है, ये परेशानी नहीं, ये तप है। इस तप को स्वीकार करके शक्तिवान बन करके अपने को उठाओ, परिवार को उठाओ, समाज को उठाओ, और समाज को उठना यही राष्ट्र का निर्माण है। ये इसलिए व्यक्ति का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण है, इसलिए राष्ट्र के निर्माण में हम आप सहायक हैं। आइए, इन बदन ने वचन दिया विचार, आनंद और परमानंद, जो भी काम करो वेद क्या, जो भी काम करो आनंद से करो, जो भी खाओ आनंद से खाओ। फिर मनोविज्ञान आ गया, खाने के बाद आनंद आएगा ये गारंटी नहीं है, काम करने के बाद आनंद आए गारंटी नहीं, क्यों निष्फल हो गए। तो आज सुबह उठे, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, परिणाम मत देखो, परिणाम कल की बात है। लेकिन वेद के आधार पर मनोविज्ञान कह रहा है, आज का सारा दिन चाहे खाने को कुछ मिले, काम करने कुछ मिले, लेकिन उसे आनंद से करो, और आनंद से करोगे तो फल भी आनंद का मिलेगा, और दुख से करोगे तो फल भी दुख। इसलिए हर काम आनंद से शुरू करो, और सब में परमात्मा देखो, परेशानी आएगी। राम भी आनंद स्वरूप है, परमात्मा का अवतार है कृष्ण भी, परेशानियां उनको उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इस मंत्र से परेशानी नहीं आएगी, महाराज ऐसा मंत्र दीजिए दुख नहीं आएगा। मंत्र जपने पर भी दुख आएगा, लेकिन आप सही रास्ते चल रहे हैं तो इतना मैं जानता हूं, दुख है कि जगह एक दिन आनंद आएगा, सफलता आएगी। इसलिए मेरे मंत्र से दुख तो आएगा, लेकिन दुख को स्वीकार करके आनंद से चलोगे तो सफलता अपने आप आएगी, उसे बुलाने की कोई जरूरत ये है आनंद हो पर। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।
सारे बार बहुत।